अभिवादन स्वीकार कीजिए सरफिरोजी का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में। जिस तरह आप रोज सुबह सैर पर निकलते हैं अपने स्वास्थ्य में इजाफा करने के लिए, उसी तरह हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको रोज लेकर जाते हैं दुनिया की सैर पर, ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो सके। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपको देंगे देश दुनिया के समाचार, मौसम की जानकारी, पलटेंगे इतिहास के पन्नों को और याद करेंगे कुछ मशहूर हस्तियों को। प्रोग्राम के इस अंक में मेरे साथ हैं शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार सरफिरोजी, एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टुडे, दैट इज 25 जुलाई। ऑल ऑफ दिस एंड मोर कमिंग अप, बट द हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi said India remains committed to elevating the bilateral ties with the UK after visiting UK Foreign Secretary David Lammy in New Delhi last evening. Mr. Modi also welcomed the desire to conclude a mutually beneficial free trade agreement. In a social media post, Mr. Modi said that he appreciates the priority accorded by his UK counterpart Keir Starmer to broaden and deepen the comprehensive strategic partnership between the two countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India-UK bilateral relationship is very important and it has enormous possibilities. He met with UK Foreign Secretary David Lammy in New Delhi yesterday. Dr. Jaishankar emphasized that both countries have a big global presence in different ways. He said it is important that India and the UK work together on global issues and in global platforms.
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए सीमा रेखाएं निर्धारित करने के प्रति सजग है। कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी विनियम अधिसूचित किया, जिसे 2022 और 2023 में संशोधित किया गया। श्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विनियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी मध्यस्थों के लिए विशेष कानूनी दायित्व निर्धारित करता है। उधर राज्यसभा में कल आम बजट पर चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने अग्निवीर योजना रद्द करने और नीट परीक्षा को खत्म करने की मांग की। भाजपा के राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि देश में 8% से अधिक की विकास दर के साथ देश में रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना पीएलआई पर श्वेत पत्र की मांग की। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने को कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
जम्मू कश्मीर हैज नॉट विटनेस्ड अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल सिंस 2023, एंड द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल हैज इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स इन द यूनियन टेरिटरी। The overall law and order scenario in Jammu and Kashmir has seen remarkable improvement after abrogation of Article 370. In a written reply in the Rajya Sabha, Minister of State and Home Nityanand Rai said that after abrogation of Article 370, the Union Territory of Jammu and Kashmir has witnessed an era of peace, progress and prosperity. Schools, colleges, universities, hospitals and other public institutions are functioning efficiently without any strikes or any kind of disturbances during the last 4 years. Due to improved law and order, Jammu and Kashmir recorded more than 2 crore tourist visits in 2023.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने कल राज्यसभा में ये जानकारी दी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नीट यूजी परीक्षा और बजट पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट आवंटन 3.3 लाख करोड़ रुपए है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 37.3% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है।
Breaking barriers towards a healthier future, 58 panchayats in Ladakh have achieved the TB Mukt Panchayat status under the nationwide initiative launched by Prime Minister Narendra Modi. The announcement comes after rigorous verification processes conducted by the Central TB Division and the Ministry of Panchayati Raj aimed at empowering Panchayati Raj institutions to combat tuberculosis effectively. Launched on World TB Day in Varanasi on March 24 last year, the TB Mukt Panchayat initiative seeks to raise awareness about the challenges posed by tuberculosis and promote active participation by local governing bodies in its elimination. The initiative also aims to foster healthy competition among panchayats and recognize their contributions to creating TB-free communities. The impressive achievement of 58 panchayats in Ladakh reflects the region's unwavering commitment to public health and the relentless efforts of its local leaders and health workers. This milestone is part of a larger national success, with 17,490 gram panchayats across India qualifying for the TB Mukt Panchayat status for the year 2023.
एशिया कप महिला क्रिकेट सेमीफाइनल में कल वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला बांग्लादेश से और मेजबान श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों मैच दांबुला में खेले जाएंगे। इससे पहले दांबुला में कल खेले गए मैच में श्रीलंका ने थाईलैंड को 10 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 93 रन बनाए। श्रीलंका ने जीत के लिए 94 रन का लक्ष्य 11 ओवर और 3 गेंदों में ही हासिल कर लिया।
Now talking about the Paris Olympics, India's journey will begin today, a day before the opening ceremony. Archers Deepika Kumari, Ankita Bhagat, Bhajan Kaur and B. Dheeraj, along with Tarundeep Rai and Praveen Jadhav, will compete in the individual ranking round. The remaining stages will be held from July 28 to August 4. The women's ranking round will commence at 1 p.m, followed by the men's ranking round at 5:45 p.m. Indian Standard Time at the Esplanade des Invalides. More sports news now. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Abhinav Bindra, who has been awarded the Olympic order. In a social media post, Mr. Modi said, "It makes every Indian proud." The Prime Minister added that be it as an athlete or a mentor to upcoming sportspersons, Abhinav has made noteworthy contributions to sports and the Olympic movement.
और श्रोताओं, आपको देंगे अब महानगरों के मौसम का हाल। शुरुआत कर रही हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में जानकारी देंगी शगुन।
Right, beginning with Chennai. Chennai is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 26 degrees. Now we'll look at the updates from the metro city Chennai first. Tamil Nadu's electronic exports would hit $12 billion in the current fiscal. According to the State Industries Minister, TRB Raja, the state recorded a breaking $9.6 billion in electronics exports during the previous fiscal, forming nearly 33% of India's total exports in the segment. The exports in the electronics sector would be to the tune of $12 billion in this financial year. Speaking at a conference yesterday, the UAE Minister of Economy, Abdullah bin Tuk Al-Mari, said that the trade relations between the UAE and Tamil Nadu are on the bright spot. The possibilities for new investments are high, which would also generate employment opportunities. He said that the possibilities for new investments are high and would also generate employment opportunities. He said that the bilateral trade between the two countries has grown by 15% since the signing of the Comprehensive Economic Partnership Agreement. Moving on to Bengaluru, a non-profit organization, Adamya Chetna, run by Anant Kumar in Bengaluru, had organized a mega tree planting activity at Ayodhya, the birthplace of Lord Ram. As part of the event organized on July 22nd, 300 saplings of Sita Ashok, Shim Shipa and Noni trees were planted in Ayodhya by the organization. These saplings were planted at the Composite School campus, Dhaba Semar, and at Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University campus. Over 80 volunteers from different parts of the country, mainly from Karnataka and Kerala, travelled to Ayodhya. former Minister and Member of Parliament Lallu Singh, Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Nyas Mahant Nitya Gopal Das, noted educationist P.V. Krishna Bhatt, the Vice Chancellor of Lohia University, Dr. Pratibha Goyal, among others, participated in the tree planting events. Adamya Chetna is providing midday meals to over 1,60,000 school children every day across four locations in the country. Since over 445 consecutive weeks, the organization has been propagating environmental awareness and taking up tree plantation campaigns. More news from Bengaluru. The Center for Cellular and Molecular Platform C-CAMP has partnered with the UK Department of Health and Social Care's Global AMR Innovation Fund to nurture and fund innovations for antimicrobial resistance in the environment. The UK-based funding agency has committed to fund £5.1 million for over 3 years. The financial support will encourage development of innovative solutions for addressing antimicrobial resistance, or AMR, in the environment for the benefit of low- and middle-income countries which face the highest burden of drug resistance. On to Hyderabad Metro now. A special cervical cancer screening camp was held for the benefit of Raj Bhavan women staff and their family members in Hyderabad yesterday. Telangana Governor C.P. Radhakrishnan led the initiative aiming at providing comprehensive health tests. Speaking on the occasion, the governor emphasized the importance of prevention of cervical cancer. Referring to the high incidence among Indian women, the governor highlighted the effectiveness of vaccination, regular screenings, and education in reducing cervical cancer cases. This was all from Chennai, Bengaluru, and Hyderabad. Now, Safirozi, what do we have from दिल्ली मुंबई एंड कोलकाता
जी शुरुआत कर रही हैं दिल्ली से जहां दिल्ली से सटे गाजियाबाद के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस स्टेशन पर कल से हर शुक्रवार को नमो भारत अनप्लग्ड लाइव म्यूजिक फ्राइडे साप्ताहिक म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी नमो भारत के यात्रियों के यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए इसका आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में हर शुक्रवार की शाम 6 से 7 बजे तक विभिन्न म्यूजिकल श्रेणियों के स्थानीय कलाकार अपनी लाइव प्रस्तुतियां देंगे। दिल्ली सरकार ने इस वर्ष पौधारोपण अभियान के अंतर्गत राजधानी में 64 लाख से अधिक पौधे लगाने और वितरण करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के पर्यावरण व विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि जहां विकास वहां हरियाली थीम पर दिल्ली सरकार राजधानी में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को मुफ्त पौधे वितरित कर रही है। श्री राय ने बताया कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी ने राजधानी के कश्मीरी गेट में कांवड़ शिविर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि 20,000 लोगों की क्षमता वाला ये शिविर देश के सबसे बड़े कांवड़ शिविरों में से एक है। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए राजधानी में 185 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में वाटरप्रूफ टेंट रहने तथा सोने की व्यवस्था, पेयजल और शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन शिविरों में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा और आपातकालीन स्थिति के लिए सभी शिविरों में एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। अब चल रहे हैं मुंबई की ओर, जहां मुंबई नगर महानगर क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में से एक तानसा झील जलस्तर से ऊपर बह रही है। इससे पहले तुलसी झील की भी यही स्थिति थी। पिछले कुछ दिनों में जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार भारी वर्षा से जलाशयों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कल सुबह के माप के अनुसार 7 झीलें सामूहिक रूप से अपनी कुल क्षमता का 58.58% रखती हैं। तानसा झील की अधिकतम भंडारण क्षमता 14,508 करोड़ लीटर है। ब्रीनगर निगम मुंबई ने धर्मवीर आनंद दिगे दिव्यांग वित्त सहायता योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 40% दिव्यांगता वाले 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को हर 6 महीने में 6,000 रूपये मिलेंगे और 80% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को हर 6 महीने में 18,000 रूपये मिलेंगे। दोनों समूहों को ये लाभ अगले 5 वर्षों तक मिलेगा। इस योजना से लगभग 60,000 लोगों को लाभ पहुंचेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे लाइनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 250 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाने की योजना की घोषणा की। रेलवे प्रणाली में सुधार और यात्रा अंतराल को संबोधित करने के लिए 10 परियोजनाएं चल रही हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दो ट्रेनों के बीच के अंतराल को 180 सेकेंड से घटाकर 150 सेकेंड करना है। और एक खबर कोलकाता से भी है, जहां शिक्षा मंत्री डॉ सुकांतो मजूमदार ने उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व भारत में शामिल करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव सौंपा है। मंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में कई समानताएं हैं। उन्होंने बताया कि अगर पश्चिम बंगाल के इस हिस्से को पूर्वोत्तर भारत में शामिल कर लिया जाए तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले कई वित्तीय आवंटन से उत्तर बंगाल का विकास आगे बढ़ेगा। और अब आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, बौछारों के साथ बिजली गरजने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। चलिए श्रोताओं, अब इतिहास की किताबों को खोलते हैं और जानते हैं आज की कुछ बड़ी घटनाएं। दुनिया के इतिहास में 25 जुलाई की तारीख पर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है। श्रोताओं, आज के दिन विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जा रहा है।
राइट, आईवीएफ विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द सक्सेस ऑफ आईवीएफ ओपन्ड अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड हैज सिंस अलाउड मिलियंस ऑफ कपल्स वर्ल्ड वाइड टू कंसीव एंड हैव चिल्ड्रन। एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन वॉज बोर्न इन द ईयर 1978। एंड दिस बेबी मेड हिस्ट्री एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बेबी टू बी कंसीव्ड वाया दिस वेरी प्रोसेस विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। The groundbreaking procedure was carried out by British scientists Dr. Patrick Stiptoe and Professor Robert Edwards at Oldham and District General Hospital in Manchester, England. His birth was a major medical milestone, revolutionizing the field of reproductive medicine and offering hope to many couples who were struggling with infertility.
और शगुन, विज्ञान की मदद से अब हर चीज संभव हो रही है। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब निसंतान लोगों को भी, जैसा कि आपने बताया, बच्चों का सुख प्राप्त हो रहा है। और हमने अभी इस बारे में बात की कि आईवीएफ की वजह से ये पॉसिबल हुआ। एक ऐसा वक्त था जब आईवीएफ तकनीक और इससे पैदा होने वाले शिशुओं को अलग नजरों से देखा जाता था। हालांकि अब इस तकनीक के बारे में खुलकर बातें होने लगी हैं और कई लोग इस तकनीक से संतान का सुख पा रहे हैं। पर शगुन, अब भी आईवीएफ तकनीक को लेकर कई तरह के भ्रम समाज में फैले हुए हैं, तो आज का ये मौका हमारे पास है जब हम इन भ्रमों से खुद को दूर कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आईवीएफ से गर्भ धारण होने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ये तकनीक कारगर ही रहे। प्रक्रिया का सक्सेस रेट उम्र, स्वास्थ्य जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। लोगों को ये भ्रम रहता है कि आईवीएफ से होने वाले बच्चों का मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया से हमेशा जुड़वा या इससे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। ये सही है कि आईवीएफ के जरिए पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात विकार का खतरा होता है, पर कई शोध दिखाते हैं कि आईवीएफ से होने वाले शिशु प्रकृति गर्भधारण से होने वाले बच्चों की तरह ही स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी आईवीएफ को लेकर ऐसे भ्रम का शिकार हैं, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि तकनीक ने हमारे लिए ही तरक्की की है ताकि हम इन तकनीकों का फायदा उठाकर अपने जीवन को आसान बना सकें। और श्रोताओं, देश दुनिया के इतिहास में 25 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा कुछ इस तरह है। 1689 में फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ आज ही के दिन युद्ध की घोषणा की। सन 1813 में 25 जुलाई को ही भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित की गई। 1837 में आज ही के दिन पॉइंट टू पॉइंट टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया।
In the year 1941, the American automaker Henry Ford, sitting in Michigan, wrote a letter to the Indian nationalist leader Mohandas Karamchand Gandhi.
1943 में आज ही के दिन इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने सत्ता छोड़ी, जिसके बाद राजा विक्टर इमैनुएल ने मार्शल पायत्रो बादोग्लियो को नया प्रधानमंत्री बनाया। 1948 में 25 जुलाई के ही दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड बनाया और 1963 में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने आज के दिन परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए।
In 1976, the famous Face on Mars photo was taken as the Viking 1 mission circled the red planet in search of a landing site for its sister ship Viking 2. It snapped photos of Mars for engineers at NASA to study. And in the year 1984, Savitskaya created history and became the first woman to do a spacewalk conducting EVA outside the Salyut 7 space station for nearly 3 hours and 35 minutes.
और 1994 में आज ही के दिन जॉर्डन और इसराइल के बीच 46 वर्ष से चल रहा युद्ध समाप्त हुआ। साल 2000 में आज ही के दिन एयर फ्रांस का एक कॉनकॉर्ड विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त होकर एक होटल पर गिर गया। हादसे में 109 विमान यात्रियों के अलावा होटल में मौजूद चार लोग भी जान गंवा बैठे।
In 2007, Pratibha Patil was sworn in as the 12th president of India, making history as the country's first female president.
और अब याद करते हैं उन शख्सियतों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से रुखसत हुए। कहां से शुरुआत कर रहे हैं शगुन?
राइट, वी आर रिमेम्बरिंग टुडे होवर्ड ट्रेसी हॉल, द अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट एंड वन ऑफ द अर्ली पायनियर्स इन द रिसर्च ऑफ सिंथेटिक डायमंड्स यूजिंग अ प्रेस ऑफ हिज ओन डिजाइन। ओरिजिनली फ्रॉम ऑस्टिन यूटा हॉल, ही रिसीव्ड हिज बीएस, एमएस एंड पीएचडी डिग्रीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। ही वर्क्ड एट जीई रिसर्च लेबोरेटरीज वेयर दे अनाउंस्ड ऑन February 15, 1955, that he, along with Francis Bindi, Robert Winter, and Herbert Strong, synthesized diamond from carbon in a process that was reproducible. And today, it's also the birth anniversary of S.R. Srinivas Iyer, the Indian Carnatic vocalist. As a young child, he exhibited an aptitude for and interest in music. His beloved mother's brothers, who were both renowned musicians, they prompted him to consider music as a suitable career for his path. Now, talking about his accolades, he was the recipient of Sangeet Kalanidhi awarded by the Music Academy in 1947. He has also received many other awards, including Padma Bhushan and Padma Vibhushan.
और आज पुण्यतिथि है बाबू राम इशारा की। ये प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक थे। इन्होंने बासु भट्टाचार्य के अलावा दुलाल गुहा को निर्देशकीय सहयोग दिया। परवीन बॉबी को फिल्मी दुनिया में सबसे पहले अवसर बीआर इशारा ने ही दिया था। इन्होंने हम दो, हमारे दो, चेतना, चरित्र, औरत जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। अपनी फिल्मों में नए लोगों को ब्रेक देने वाले बीआर इशारा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म एक नजर का निर्देशन भी किया था। ये अमिताभ के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी। सुनते हैं उनकी इसी फिल्म का ये गाना।
किसी को चाहिए।
Today we are also remembering Samuel Taylor Coleridge, English poet, literary critic and philosopher. His lyrical ballads written with William Wordsworth heralded the English Romantic movement, and his Biographia Literaria in the year 1817 is the most significant work of general literary criticism produced in the English Romantic period. He wrote the poems The Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan. His critical works were highly influential, especially in relation to William Shakespeare, and he helped introduce German idealist philosophy to English-speaking cultures. He coined many familiar words and phrases, including suspension of disbelief.
आज ही पुण्यतिथि है गणेश वासुदेव की. ये अपने वक्त के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता थे. गणेश वासुदेव ने मुख्तार वकील की परीक्षा पास करने के बाद पुणे में रहकर वकालत की. गणेश वासुदेव जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना आरंभ किया और इस उद्देश्य से 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की. न्यायमूर्ति रांडे के साथ मंत्रणा कर गणेश वासुदेव ने 1872 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया. इन्होंने देशी व्यापार तिज्जक मंडल की स्थापना कर स्याही, साबुन, मोमबत्ती और छाते जैसी स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रोत्साहन दिया.
It's also the birth anniversary of Jay Mahendran, Indian film director, screenwriter and actor. He's known for his work in the Tamil film industry. He entered the film industry as a screenwriter, writing scripts for nearly 26 films. He made an immediate impact with his first directorial venture, Mullum Malarum. Mahendran made his breakthrough as a screenwriter for the film Naamuvar in the year 1966. He has also acted in films during the latter part of his film career, including राज, थेरी, निमिर एंड पेट्टा.
आज पुण्यतिथि है गोदावरी मिश्र की. ये उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे. इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां तथा जीवनी आदि लिखी. भारतीय साहित्य अकादमी ने इनकी आत्मकथा को पुरस्कृत किया था. उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके अथक प्रयत्न से ही संभव हुई. इनकी मुख्य रचनाएं हैं कुसुम, कलिका, किसलय, आलेखिका, कवितायन, चयनिका, गीतायन.
Today it's also the birthday of Jim Corbett, the conservationist and author. He was born on this day only in the year 1875 in Nainital in the present-day Indian state of Uttarakhand. As an author, he earned a lot of critical acclaim. His book Man-Eaters of Kumaon and Jungalore were the bestsellers. He is best known for his efforts in wildlife conservation and for tracking and hunting down several man-eating tigers and leopards in the region.
आज जयंती है श्याम चरण दुबे की. ये भारतीय समाजशास्त्री और साहित्यकार थे. इन्हें कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किया जाता है. ये साहसिक और मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्ति थे. मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के सदस्य रहकर इन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर पर पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण करवाया. साल 1993 में इन्हें इनकी कृति परम्परा और इतिहास बोध के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया था.
Today we are also remembering Peter Allen Greenbaum. He is professionally known as Peter Green. He was English blues rock singer, songwriter and guitarist. He is the founder of Fleetwood Mac, this rock band. He was inducted into Rock and Roll Hall of Fame in the year 1998. He founded Fleetwood Mac, which I am talking about, in the year 1967 after a stint in John Mayall's Blues Breakers and quickly established the new band as a popular live act in addition to a successful full recording act before departing in 1970. His songs such as Albatross, Black Magic, Woman, Oh Well, The Green Manalishi and Man of the World appeared on singles charts, and several have been adapted by a variety of musicians. And for you listeners, we have this song Albatross. Thank you.
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सर फिरोजी और शगुन को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
स्टे ट्यून फॉर समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।